जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। यशोधनन्दन व्रज जनरञ्जना यमुनतीरावनचारी। यमुनतीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा वृंदावन चंद्र, राधा वृंदावन चंद्र राधे, वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे, जय राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी राधे, कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमा जय सुदर्शना, बलदेव सुभद्रमा जय सुदर्शना, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद, श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद, श्रीनिवास श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय गुरुदेव 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 गुरुदेव, जय ओम शिवाय परमहंस परिवार का सर्वोत्तम शिक्षक अभय चरणारविंद भक्ति रानी के स्वामी के साथ ही अनंत कोटि वैष्णव गौरांग, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्या नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरये, नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतिरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चा, नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण, आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद। अध्याय क्रमांक पहला, महाराज प्रियव्रत का चरित्र। तो पहला श्लोक है, राजवाच प्रियव्रतो भागवता आत्मा राम कथं मुने गृहे अरमता यन्मूलः कर्मबन्धा परा भवः। राजवाच प्रियव्रतो भागवता आत्मा राम कथं मुने गृहे रमत यन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः। राजोवाच प्रियव्रतो भागवता आत्मा रामः कथं मुने गृहे रमता यन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः। राजोवाच प्रियव्रतो भागवता आत्मा राम कथं मुने गृहे रमत यन्मूलः कर्मबन्ध पराभव। राजोवाच प्रियव्रतो भागवता आत्मा रामः कथं मुने गृहे रमत यन्मूलः कर्मबन्ध पराभव। राजोवाच, राजा परीक्षित ने कहा, प्रियव्रतः राजा प्रियव्रत, भागवतः परम भक्त, आत्मा आरामः आत्म साक्षात्कार में रुचि रखने वाला, कथम क्यों मुने हे मुनि गृहे घर पर अरमता भोग किया, यन मूलः जैसे मूल कारण मानते हुए, कर्मबंध सकाम कर्मों का बंधन, पराभवः उद्देश्य के पराजय। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की, राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे मुनिवर, परम आत्मदर्शी भगवत भक्त राजा प्रियव्रत ने ऐसे गृहस्थ जीवन में रहना क्यों पसंद किया जो कर्मबंध जो कर्मबंधन सकाम कर्म का मूल कारण तथा मानव जीवन के उद्देश्य को पराजित करने वाला है। तात्पर्य, भागवतम के चतुर्थ स्कंद में श्रील सुखदेव गोस्वामी ने बताया है कि नारद मुनि ने प्रियव्रत को मानव जीवन के उद्देश्य के विषय में पूर्णतया उपदिष्ट किया था। मानव जीवन का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार करने के पश्चात क्रमशः भगवान के धाम को वापस जाना है। जब नारद मुनि राजा को इस संबंध में पूर्णतया उपदेश दे चुके थे तो फिर उन्होंने भवबंधन के मूल कारण गृहस्थ जीवन में पुनः प्रवेश क्यों किया? महाराज परीक्षित अत्यंत विस्मित थे कि आत्म साक्षात्कार करने वाले तथा भगवान के प्रथम कोटि के भक्त राजा प्रियव्रत गृहस्थ जीवन में कैसे रहे। भक्त को गृहस्थ जीवन के लिए वस्तुतः कोई आकर्षण नहीं होता, किंतु आश्चर्य है कि राजा प्रियव्रत ने गृहस्थ जीवन का बहुत अधिक भोग किया। कोई यह तर्क कर सकता है कि गृहस्थ जीवन का भोग क्यों अनुचित है? इसका उत्तर यह है कि गृहस्थ जीवन में प्राणी सकाम कर्म के फल से बंध जाता है। गृहस्थ जीवन का सार इंद्रिय सुख है, और जब तक मनुष्य इंद्रिय सुख प्राप्त करने की दिशा में मन को लगाता रहता है तब तक वह कर्म फल से बंधा रहता है। आत्म साक्षात्कार के प्रति ऐसी अनभिज्ञता ही मानव जीवन की सबसे बड़ी पराजय है। यह मनुष्य जीवन विशेष रूप से कर्म बंधन से बाहर निकालने के लिए प्राप्त होता है, किंतु जब तक मनुष्य जीवन के उद्देश्य को विस्मृत करता हुआ सामान्य पशु की तरह आचरण अर्थात आहार निद्रा भय मैथुन करता है तब तक वह बद्ध जीवन में फंसा रहता है। ऐसा जीवन स्वरूप विस्मृति अर्थात वास्तविक वैधानिक स्थिति को भूलना कहलाता है। इसीलिए वैदिक सभ्यता में जीवन का शुभारंभ ब्रह्मचारी के रूप में होता है। ब्रह्मचारी का परम कर्तव्य होता है कि ब्रह्मचारी का परम कर्तव्य होता था कि वह संयम का पालन करे और संभोग से विरत रहे। अतः यदि कोई ब्रह्मचर्य के नियमों में पूर्णतः प्रशिक्षित होता है तो फिर वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करता, तब वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाता है, जिसका अर्थ है पूर्ण ब्रह्मचर्य। इस प्रकार राजा परीक्षित आश्चर्यचकित थे कि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के नियमों में प्रशिक्षित होकर भी महाराज प्रियव्रत ने गृहस्थ आश्रम में क्यों प्रवेश किया। इस श्लोक में भागवत आत्मा रामः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि कोई भगवान के ही समान आत्मतुष्ट होता है तो उसे भागवत आत्मा रामः कहा जाता है। तुष्टि कोई प्रकार की होती है, तुष्टि कई प्रकार की होती है। कर्मी जन अपने सकाम कर्मों से, ज्ञानी जन ब्रह्म ज्योति में मिल जाने तथा भक्त जन भगवान की सेवा में तत्पर रहने से तुष्ट रहते हैं। भगवान आत्म तुष्ट रहते हैं क्योंकि वे परम ऐश्वर्यवान है, और जो उनकी सेवा करने से संतुष्ट होता है वह भागवत आत्मा रामः कहलाता है। मनुष्याणाम सहस्रेशु, हजारों पुरुषों में से कोई एक पुरुष मुक्ति के लिए प्रयत्न करता है, और हजारों में से प्रयत्न करने वाले पुरुषों में किसी एक को इस संसार की चिंताओं से मुक्ति मिल पाती है तथा वह आत्मतुष्ट हो पाता है। किंतु यह तुष्टि भी अंतिम तुष्टि नहीं होती। ज्ञानी तथा कर्मी सकाम होते हैं और योगी भी, किंतु भक्त निष्काम होते हैं। भगवान की सेवा में जो तुष्टि होती है उसे अकाम कहते हैं, और यही परम तुष्टि है। इसीलिए महाराज परीक्षित ने जिज्ञासा की कि जो परम पद पर रहकर पूर्ण तुष्ट रहा हो वह गृहस्थ जीवन से कैसे तुष्ट हो सकता था। इस श्लोक में आगत पराभव शब्द भी उल्लेखनीय है। जब कोई पुरुष गृहस्थ जीवन में तुष्ट रहता है तो वह अभागा होता है, क्योंकि ईश्वर के साथ अपने संबंध को भूल चुका होता है। प्रहलाद महाराज ने बताया है कि गृहस्थ जीवन के कार्यकलापों में मनुष्य किस प्रकार उलझाता जाता है। आत्मपातम गृहम अंधकूपम, गृहस्थ जीवन अंधकूप के समान है। यदि कोई इस कूप में गिर जाता है तो उसकी आत्मिक मृत्यु अवश्यंभावी है। अगले श्लोकों में यह बताया गया है कि गृहस्थ जीवन बिताते हुए भी महाराज प्रियव्रत किस प्रकार मुक्त परमहंस बने रहे। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यानाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तु। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी दशभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का आज का श्रीमद् भागवतम में स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर आज हम पंचम स्कंद का शुभारंभ कर रहे हैं। इसमें पहला अध्याय महाराज प्रियव्रत का चरित्र। तो यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी को महाराज परीक्षित ने ये सवाल पूछा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, खास करके जो भगवान का भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति को ये सवाल तो उठता ही है। तो वर्णाश्रम धर्म में चार आश्रम बताया है, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास। तो व्यक्ति को शुरुआत के दिन में ब्रह्मचर्य का ट्रेनिंग दिया जाता है। पहले जमाने में हर एक व्यक्ति, मतलब खास करके ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य भी करते थे, लेकिन शूद्रों को कोई ऐसा ट्रेनिंग नहीं होता था। तो खास करके कलयुग में बताया गया कि हर एक व्यक्ति शूद्र है, जन्मना जायते शूद्र है। तो ये प्रभुपाद जी भी यहाँ पर बताते हैं कि वैदिक जो सिस्टम था, वैदिक सभ्यता में जीवन का शुभारंभ ब्रह्मचारी के रूप में होता था। तो ब्रह्मचार्य का ट्रेनिंग जाता था, और ब्रह्मचर्य ट्रेनिंग में पूरा कंप्लीट करने के बाद व्यक्ति अगर चाहते हैं तो उनको गृहस्थ आश्रम में भी जा सकता है या वो ब्रह्मचर्य आश्रम को कंटिन्यू कर सकता है। तो वैदिक सिस्टम बहुत ही साइंटिफिक है। तो यहाँ पर बताते हैं कि जीवन का, मानव जीवन का उद्देश्य आत्म साक्षात करने के पश्चात क्रमशः भगवान के धाम को वापस जाना है। राधा वृंदावन चंद्र भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, गौर निताय की। तो यहाँ पर बताया गया कि मानव जीवन का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार करने के पश्चात क्रमशः भगवान के धाम को वापस जाना है। तो ये वर्णाश्रम सिस्टम बहुत ही सिस्टमेटिकली साइंटिफिकली डिजाइन किया गया है। अगर कोई व्यक्ति इस वर्णाश्रम धर्म में सिस्टमेटिकल ट्रेनिंग लिया है तो उनका भगवत धाम निश्चित हुआ करता था। तो वो आश्रम कोई भी हो सकता है, ब्रह्मचारी हो सकता है, गृहस्थ हो सकता है, वानप्रस्थ संन्यास, कोई भी आश्रम में व्यक्ति रहकर भगवान का भक्ति कर सकता है। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, स्थानीय स्थित कठिन तनुवान नोव्य, मतलब कोई स्थानीय, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अपना आश्रम को चेंज करने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति कोई भी आश्रम में रहकर अपना भक्ति में प्रगति कर सकता है। लेकिन ये जो ब्रह्मचार्य आश्रम ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। ये ट्रेनिंग के साथ व्यक्ति अपना भक्ति को अच्छी तरीके से कंटिन्यू कर सकता है। तो यहां पर महाराज प्रियव्रत, महाराज प्रियव्रत का ट्रेनिंग हो चुका है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी फिर जब आश्रम चेंज किया, उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, तो सामान्यतया ये सवाल तो उठता ही है। तो खास करके ये जो प्रियव्रत के बारे में बताया गया है कि वो तो आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया है और साथ में साथ ही साथ भगवान के उत्तम कोटि का भक्त भी थे। तो श्रीमद् भागवतम में भी इसमें बताते हैं कि महताम खलु विप्रशे उत्तम श्लोका पादयो छाया निवृत्त चित्तानाम न कुटुंबे स्नहामति ही। जिन सिद्ध आत्माओं ने भगवान के चरण कमलों की शरण ली है वे उन चरण कमलों की छाया से पूर्णतया तृप्त है। उनकी चेतना कभी भी कुटुंबी जनों में आसक्त नहीं हो सकती। तो जो लोग भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनको भगवान का सेवा में ही आनंद मिलता है। तो ऐसा कोई चीज का जरूरत नहीं कि मुझे और कोई चीज प्राप्त करना है, भगवान का भक्तिमय सेवा छोड़ के और कुछ मुझे करना चाहिए, ऐसा उनका कोई इच्छा नहीं रहता। तो श्रील प्रभुपाद जी भी एक तात्पर्य में बताते हैं कि निताई पद कमल कोटिचंद्र सुशीतला ये छाया जगत अजुड़ाया। उन्होंने भगवान नित्यानंद के चरण कमलों की छाया को इतना शीतल तथा सुंदर बताया है कि भौतिक कार्यों की अग्नि से सदैव संतप्त रहने वाले समस्त भौतिकवादी उन चरण कमलों की छाया में आकर पूरी पूरी राहत पाते हैं और तृप्त हो जाते हैं। भगवान नित्य आनंद है और जो भक्त उनका सेवा करता है तो उनके जीवन में भी आनंद छोड़ के और कुछ भी नहीं रहता। तो यहां पर परीक्षित महाराज का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उन्होंने दो सवाल पूछा,
उनका में पहला सवाल ये था कि ये जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वाला उत्तम कोटि का भक्त, उन्होंने आश्रम गृहस्थ आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश क्यों किया, ऐसा क्या जरूर पड़ा उनको कि वो ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में चले गए, ये पहला सवाल था। सुखदेव गोस्वामी ने राजा को, राजा के दोनों कथनों को स्वीकार किया। पहला था तो यह कि जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति को प्राप्त है वह पुनः भौतिक जीवन स्वीकार नहीं कर सकता, ये पहला सवाल था। और दूसरा यह कि जिसने एक बार भौतिक जीवन स्वीकार कर लिया है वह कभी भी अपने जीवन में कृष्ण भक्ति ग्रहण नहीं कर सकता। सुखदेव गोस्वामी ने इस दोनों कथन को स्वीकार किया, किंतु साथ ही यह स्पष्टीकरण दिया कि जिस व्यक्ति ने पहले भगवान की कीर्ति मन से स्वीकार की है वह कभी कभी बाधाओं से प्रभावित हो सकता है, किंतु तो भी वह अपनी उच्च भक्ति के पद को नहीं छोड़ पाता। तो यही भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण भी बताते हैं, एक बार कोई व्यक्ति भक्ति करता है उनका पतन नहीं होता। अभी रिसेंटली कदम हमारा मीरा रोड का टेंपल प्रेसिडेंट कमल लोचन को है, उन्होंने भी बताया, उन्होंने यही बताया कि जो भक्त का पतन होता है और कर्म भौतिकवादी का पतन होता है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो पेड़ से एक फल है वो ऊपर से नीचे गिर जाता है तो नीचे गिर के पूरा उसका चटनी बन जाता है, लेकिन वही पेड़ में बैठने वाला कोई पक्षी है, हालांकि वो लग सकता है वो पेड़ से नीचे गिर गया, लेकिन वो ऐसा फल के जैसा वो चटनी बन जाता है, थोड़ी देर में गिर जाता है उधर से उठ के और ऊपर उड़ के चला जाता है। तो कभी कभी ऐसा भक्तों के जीवन में भी ऐसा हो सकता है कि कुछ कारण के वजह से भक्ति में वो ऐसा संभव हो सकता है, पिछले आदतों के कारण। तो फिर भी उन्होंने जो भक्ति किया हुआ भक्ति है वो कभी भी नष्ट नहीं होता है, वो शाश्वत काल के लिए उनके पास बना रहता है। भक्ति, जितना परसेंट भक्ति हमने किया है वो परमानेंट अकाउंट है, उसका कभी भी लॉस नहीं होता है। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भक्ति के मार्ग में दो प्रकार की बाधाएं आती हैं। तो भक्त का जीवन में दो प्रकार के बाधाएं आती हैं। तो पहला बाधा यह है कि वैष्णवों के चरण कमल में कोई अपराध करता है तो उनका भक्ति में बाधा आता है। तो जो व्यक्ति वैष्णवों के चरणों में अपराध करता है तो उनको तुलना किया गया है कि एक सुंदर सा एक गार्डन बनाया, ब्यूटीफुल गार्डन, और उसमें पेड़ लगा है, अच्छा सुंदर सुंदर फूल भी खिला है, और ऐसे गार्डन में अगर एक पागल हाथी को छोड़ देते हैं तो वो गार्डन को पूरा त्रस्त मस्त कर देता है, पूरा गार्डन को खिचड़ी बना के छोड़ देता है। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति वैष्णवों के प्रति अपराध करता है तो उनका भक्ति का भी वैसे ही होता है, लेकिन जो किया हुआ भक्ति है अभी उस भक्ति करके उसमें उन्होंने आध्यात्मिक एसेट उन्होंने प्राप्त किया है, वो आध्यात्मिक एसेट उनके पास रहता है लेकिन अभी उसका काम में नहीं आता है। जैसे कोई अगर बैंक में पैसा रखा है और पैसा बैंक में है और एटीएम का मशीन के पास भी गया है लेकिन पासवर्ड भूल जाता है, तो पासवर्ड भूल जाएगा तो उनको एक्सेस नहीं होता है, पैसा निकाल नहीं सकता, हालांकि पैसा उनका ही है लेकिन अभी उसका काम में नहीं आ रहा है। वैसे जब हम भक्तों के प्रति अपराध करते हैं तो कुछ काल तक वो भक्ति किया हुआ भक्ति है उनको उसका लाभ प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार वैष्णव अपराध की शक्ति इतनी प्रबल है कि बड़ा से बड़ा भक्त भी अपराध करने पर अपनी आध्यात्मिक संपत्ति को खो देता है, लेकिन कृष्ण भक्त है वो शाश्वत है। जो कृष्ण भक्ति है वो शाश्वत है, अतः ऐसे पूर्णतया विनष्ट नहीं किया जा सकता, किंतु इसकी प्रगति को कुछ काल के लिए रोका तो जा सकती है। इसी प्रकार वैष्णव अपराध भक्ति के मार्ग में पहला बाधा है, तो ये है पहला ऑब्स्टेकल भक्ति में। और दूसरा बाधा है कि जब भगवान और भगवान के भक्तों के द्वारा भगवान या उनके भक्त अपनी किसी की भक्ति को जानबूझकर अवरुद्ध करना चाहते हैं, तो उदाहरण के द्वारा बताया गया कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के बारे में बताया, तो ये दोनों भगवान के भक्त थे। अभी नरसिंह चतुर्दशी हमने मनाया, बहुत डिवोटी ने उसके ऊपर कथा भी की है। तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष पहले तो आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ जगत में थे, और वहाँ से उनका पतन होता है। इसका कारण क्या? भगवान की इच्छा है। तो भगवान की इच्छा के द्वारा तो उनको इस जगत में आना पड़ा। तो भगवान को लीला करना है तो भक्तों को भी साथ में लेके आते हैं। तो यहाँ पर बताते हैं इस प्रकार भगवत इच्छा दूसरे प्रकार की बाधा है, किंतु दोनों ही दशाओं में एक बार कृष्ण भक्ति प्राप्त कर लेने के बाद विशुद्ध भक्त विनष्ट नहीं होता। तो यहाँ पर महाराज परीक्षित यही सवाल पूछते हैं कि ये जो गृहस्थ आश्रम में कैसा क्यों गया? जो व्यक्ति भगवान के भक्ति में एकदम रमण कर रहा था, तो वास्तव में ये सही है। ये रिसेंटली जयद्वैत स्वामी महाराज भी आए थे, उन्होंने भी यही बताया कि ये चारों आश्रम में भक्ति करने के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम बहुत ही अच्छा है। इवन सन्यासी भी, सन्यास आश्रम से भी ज्यादा अच्छा है ब्रह्मचर्य आश्रम, जयदेव स्वामी महाराज कहते हैं। तो हालांकि सन्यास आश्रम सारे आश्रम में श्रेष्ठ आश्रम है, लेकिन भक्ति करने के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सन्यास आश्रम में भी बहुत सारे फॉलोअर्स रहते हैं, और महाराज बता रहे थे सवेरे जप करने के लिए भी बैठेंगे तो 10-20 लोग सामने बैठेंगे। ये लेकिन ब्रह्मचर्य आश्रम में बहुत सुंदर तरीके से गुरु के आदेश के अनुसार रहकर बहुत सुंदर तरीके से भक्ति कर सकता है। तो महाराज परीक्षित अत्यंत विस्मित थे कि आत्म साक्षात्कार करने वाला यह तथा भगवान के प्रथम कोटि के भक्त राजा प्रियव्रत गृहस्थ जीवन में कैसे रहे। भक्त को गृहस्थ जीवन के लिए वस्तुतः कोई आकर्षण नहीं होती, किंतु आश्चर्य यह है कि राजा प्रियव्रत ने गृहस्थ जीवन का बहुत अधिक भोग किया। तो यहाँ पर महाराज परीक्षित का सवाल है कि प्रियव्रत ने ये गृहस्थ आश्रम को स्वीकार क्यों किया? तो कोई सवाल पूछ सकते हैं, प्रभुपाद जी भी ये सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो प्रभुपाद जी भी एक बता रहे हैं कि इन जनरल लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप ऐसा क्यों बता रहे हैं? क्या गृहस्थ आश्रम में भोग करना अनुचित है क्या, या गलत है? गृहस्थ आश्रम स्वीकार करना गलत है? तो सामान्यतः हम जब ट्रेन में जाते हैं तो काफ़ी बार हमको पूछा जाता है कि आपने ये सब दुनिया को त्याग क्यों किया, दुनिया को क्यों छोड़ दिया आपने? लोग पूछते हैं तो ये भक्ति करना है तो गृहस्थ आश्रम में भी रहकर भक्ति कर सकते हैं। हमारा काफी सारे ब्रह्मचारी का जो माता पिता बोलते हैं कि आपको भक्ति करना है ना, मंदिर में रहकर करना है, आपको मंदिर भी बना के देते हैं लेकिन घर में बैठ के भक्ति करें। मंदिर घर में भी मंदिर बना के देंगे, उसमें बैठ के भजन करो लेकिन घर में रहो। मंदिर आपको बना के देंगे घर का बाजू में, लेकिन मंदिर में मत जाओ। तो एक व्यक्ति जू मंदिर में चले गए, तो उनके बेटा ब्रह्मचारी बना था जू मंदिर में, तो पिताजी चले गया ब्रह्मचारी आश्रम में। वहां पर प्रेसिडेंट को पूछा, हमारा बेटे को ब्रह्मचारी क्यों बनाया और वो भी इतना जल्दी ब्रह्मचारी बनाने की क्या जरूरत है? तो भक्ति तो इतना कम उम्र में करना चाहिए। तो वो प्रेसिडेंट थोड़े इंटेलिजेंट थे, उन्होंने पूछा कि कौन से उम्र में भक्ति करना चाहिए। अरे बोले 50 साल के बाद। तो प्रेसिडेंट ने बोला कि ठीक है, आप यहाँ पर रहिए, बेटे को भेज देंगे। तो व्यक्ति वो ठीक है, मैं घर में जाके पूछ कर आता हूँ। तो घर में जाने के पूछने के लिए घर गया तो वापस नहीं आया। तो वास्तव में ये बहुत कठिन है, इतना आसान भी नहीं है। तो भक्त को गृहस्थ जीवन के लिए वस्तुतः कोई आकर्षण नहीं होता, किंतु आश्चर्य है कि राजा प्रियव्रत ने गृहस्थ जीवन का बहुत अधिक भोग किया। तो यहाँ पर राजा प्रियव्रत के बारे में आगे कहानी में आएगा। राजा प्रियव्रत महान उत्तम कोटि के भक्त थे, उनका भी कोई इच्छा नहीं था। मैं पढ़ रहा था यहाँ पर 9th कैंटो में ययाति महाराज का लीला है, तो वहाँ पर ययाति महाराज का जो पिताजी है नहुषा, महाराज नहुषा तो राजा थे पूरे पृथ्वी के। जब स्वर्ग में इंद्र का पतन हो गया तो देवता लोग धरती में आ गए और वो ढूंढ रहे थे कि कोई बहुत ज्यादा पुण्यवान व्यक्ति कौन है ताकि उनको इंद्र पदवी देंगे। स्वर्गलोक में भी ऐसा कोई नहीं था इंद्र का पदवी प्राप्त संभालने के लिए, इसलिए वो लोग धरती में आ गए। तो सब जगह ढूंढने के बाद नहुष महाराज को उन्होंने सेलेक्ट किया, ये है सबसे ज्यादा पायस पुण्यवान व्यक्ति। उनको ऑफर रखा कि आप जाके स्वर्ग में जाके राजा बनिए, इंद्र का पदवी स्वीकार कीजिए। तो महाराज नहुष ने अपने पुत्रों को बुलाया कि आप, पहला पुत्र को बुलाया, उसका नाम था यति। यति मतलब क्या है? जतिपुरा जगह, जतिपुरा हम लोग इधर जाते गोवर्धन में जाते हैं, जतिपुरा मिलता है। जतिपुरा मतलब माधवेंद्रपुरी, यति सन्यासी थे तो उनका जगह है जतिपुरा। तो जतिपुरा में यतिपुरा पहले था इसलिए जतिपुरा आ गया। तो यति मतलब सन्यासी, उनका नाम जैसे यति था तो उनका कार्य भी वैसा था। तो जब महाराज नहुष ने उनको बोला कि आप राजा बनिए, तो उन्होंने बोला कि मैं तो राजा नहीं बन सकता, क्योंकि उन्होंने सीधा बताया कि मुझे राजा बनना है तो फिर राजा का साथ साथ में जो आता है उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। पिता ने हालांकि दे दिया था फिर भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया, तो यति सन्यासी बन गए, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो वहां पर बताया गया कि यत्र प्रविष्टा आत्मा, वहां पर जो प्रवेश करने के बाद आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते, इसलिए यति ने उसको स्वीकार नहीं किया। तो बाद में ययाति को भी बोला कि आप स्वीकार करो, उन्होंने भी स्वीकार नहीं किया। फिर नहुष महाराज नहुष ने स्वर्ग और धरती दोनों का राजा बने, दोनों जगह राजा, लेकिन इतना बड़ा पुण्य आत्मा भी वहाँ पर स्वर्ग में जाने के बाद पोस्ट पोजीशन स्वीकार करने के बाद फिर क्या हुआ, उन्हें सोचने लगा कि ये जो महाराज नौश ने यही सोचा कि अभी ये सारे संपत्ति मेरा है, मैं इंद्र हूं और मैं इसका भोग करना चाहता हूं। तो महाराज नौश ने सब कुछ अपना समझकर कि उन्होंने ये भी सोचा कि पहला जो राजा था इंद्र, उनका पत्नी को भी सोचा कि ये मेरा मेरा भोग के लिए है, तो फिर उनका भोग करने के लिए इच्छा की। तो श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि बाद में उनका पतन हो गया, क्योंकि इनका महाराज नौश ने जो सोचा था अभी मुझे भोग करना चाहिए, तब उन्होंने इनको सर्वेंट को भेज दिया शची के पास और उनको बताया कि आप हमारा ये इंद्र तृप्ति के लिए आपको साथ देना है। तो शची एक पतिव्रता स्त्री थी, वो कन्फ्यूजन हो गया अभी क्या करना है। पहली बात तो राजा नहुष का आदेश है, राजा का आज्ञा को त्याग नहीं कर सकते हैं, और साथ साथ में पतिव्रता स्त्री थी उसको स्वीकार भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने बुद्धिमत्ता से अपने गुरु का आश्रय लिया। तो अगस्त्य मुनि को पूछा कि राजा नहुष का ऐसा आदेश आया है, मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि आप चिंता मत करो, स्वीकार करो, लेकिन कंडीशन के साथ। उनको बताओ कि अगर नहुष महाराज का जो पालकी है सप्तर्षियों के द्वारा पालकी ढोके वो उनके पास आते हैं, सचिव के पास आते हैं, तो हम तैयार हैं। तो उन्होंने बताया कि ये क्या बड़ी बात है, ये जो सप्तर्षि लोग हैं ये लोग खाते हैं और कुछ काम तो नहीं करते हैं, ऐसे पड़े रहते हैं। तो उन्होंने उनको बोला अब ऐसे एक आदेश में आ जाएंगे, तुरंत उन्होंने आदेश दिया और सप्तर्षियों ने भी राजा का आदेश पालन किया और पालकी में बैठ गया नहुष महाराज और खा पी कर एकदम हट्टा करता था। और ये सप्तर्षि एकदम तपस्वी थे और बहुत मुश्किल से उनको उठा के लेके जा रहे थे। उनमें से अगस्त्य मुनि बहुत छोटे हाइट के थे, तो उन्होंने बताया कि बहुत कठिन हो रहा है, थोड़ा धीरे धीरे चल रहे थे। और इनका जो राजा नहुष का इंद्र तृप्ति का इच्छा इतना आतुर था, तो बोले जल्दी जल्दी चलो, संस्कृत में बोले सर्प सर्प। तो अगस्त मुनि बहुत गुस्सा हो गया, सर्प सर्प बोल रहे थे, ठीक है सर्प बन गए। इमीडिएटली उनको शाप दिया तो महाराज नहुष का आधा शरीर सर्प बन गया। तो ऐसे जब व्यक्ति इंद्र तृप्ति को अपना जो गोल मानकर बैठते हैं तो उनका जीवन का अधपतन होता है। तो इवन वैदिक जीवन में गृहस्थ आश्रम में भी दो प्रकार होते थे, एक गृहस्थ और एक गृहमेधी। तो गृहस्थ और गृहवृत्ता, प्रभुपाद जी बोलते इसमें डिफरेंस है कि एक नहीं है। इन जनरल लोगों को ये गृहस्थ मतलब जो कोई शादी किया वो गृहस्थ है, तो ऐसा नहीं है। तो गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति रहता है तो उनका केंद्र भगवान रहता है और भगवान का तृप्ति के लिए वो जीवन बिताता है। तो व्यक्ति पहले गुरु का आदेश लेकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। तो महाराज प्रियव्रत, उनका बिल्कुल इच्छा नहीं था कि वो शादी करे और राजा बने। तो आत्मतृप्त थे, आत्मतुष्ट थे, आत्माराम थे। जैसे यहाँ पर बताया गया कि दो प्रकार का ये बताया गया है कि एक तो भगवान आत्मा राम है और एक भगवान का शुद्ध भक्त आत्मा राम है। तो जो एक भगवान को आत्मा राम आत्मा तुष्ट बताया गया है, आत्मा भगवान के पास सारे ऐश्वर्य है वो उनका तुष्टि करने के लिए, षडैश्वर्य पूर्ण है भगवान और उनको बताया गया कि भागवत सॉरी आत्मा राम, भगवान आत्मा राम है। और यहां पर बताते हैं कि दूसरा आत्मा राम है भागवत आत्मा राम है। जो भगवान आत्मा राम आत्मतुष्ट है आत्मतृप्त है, ऐसे भगवान का जो सेवा में हमेशा लिप्त रहता है 24 आवर्स भगवान का सेवा में लिप्त रहता है उनको भागवत आत्मा राम बताया जाए तो वो भी संतुष्ट रहता है, उनके जीवन में ऐसा कोई चीज की कमी नहीं लगता है। तो जो व्यक्ति भगवान का सेवा में लगा नहीं है तो हमेशा खोया खोया रहेगा, तो उनको तुष्टि नहीं मिलता है। तुष्टि भगवान से ही आता है, संतुष्टि भगवान का सेवा में आता है। तो पिछले इसमें फोर्थ कैंटो में भी नारद मुनि बताते हैं संतुष्ट येन केन वा। तो संतुष्ट रहना है तो भगवान का सेवा करने से ही, भगवान का सेवा ही संतुष्टि हमको प्रदान कर सकता है। अदरवाइज अगर हम सोचते हैं कि ये संतुष्टि और कहीं मिलने वाला है तो इस भौतिक जगत में संतुष्टि नाम की चीज नहीं है, क्योंकि भगवत भगवान ने ही ये सृष्टि को रचना किया है, वही इंजीनियर है। उन्होंने दो बार स्टैम्प मार दिया भगवद गीता में, एक बार दुखालया अशाश्वतम एक बार बताया और एक बार बताया कि अनित्यम असुकम लोकम इमं प्राप्य भजस्वमाम। तो अशाश्वतम दुखालयम अशाश्वतम, इस भौतिक जगत में दुखालय है जहां पर दुखी मिलने वाला है। महाराज प्रहलाद महाराज भी यही बताते हैं, कुत्राशिष श्रुति सुख मृगतृष्णि रूप। बौद्ध जगत में सुख है मतलब कैसे मृगतृष्णि रूप मरीचिक के बराबर है। तो प्राणी दौड़कर आता है पानी जैसा दिखता है मरुभूमि में, तो लेकिन एक्चुअली वहां पर जाएंगे तो उसमें पानी नहीं रहता। कुत्राशिष श्रुति सुखा, श्रुति सुखा मतलब केवल सुनने के लिए। इस बौद्ध जगत में सुख है मतलब किस लिए, केवल सुनने के लिए, एक्चुअली आनंद करने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं है वहां पर। कुत्राशिष कुतः सुख, कुत्राशिष श्रुति सुख मतलब केवल सुनने के लिए। कुत्राशिष श्रुति सुख मृगतृष्णि रूप वेदम कलेवरम अशेष रुजा विरोह। जो शरीर है अनलिमिटेड मिजरी से भरा हुआ है, रोग से भरा हुआ है, खास करके आज सारे दुनिया के लोग रोग से पीड़ित है, या तो चिंता से पीड़ित है तो रोग से पीड़ित है। तो उत्तराशिष श्रुति सुख मृगतृष्णि रूप क्वेदम कलेवरम अशेष रुजामरोह निर्विद्यते नतु जन यदपेति विद्वान। कई सारे पढ़े लिखे बड़े बड़े विद्वान लोग भी इसको जानते हैं क्या इसमें सुख नहीं, फिर भी क्या लगता है, कामानलम मधुलवई, जो काम के अनल है जो काम की अग्नि है मधु के बराबर लगता है, इतना मीठा लगता है, लगता है मीठा लेकिन एक्चुअली है नहीं। काम अनल एक्चुअली क्या है, वो अग्नि है, वो जलाकर राख करने वाला है, लेकिन लगता कैसे, मधु लवाई शमयन दुरापई, उसको शमन करना मुश्किल है मतलब कठिन है। तो इसलिए महाराज परीक्षित यहाँ पर सवाल पूछते हैं कि ऐसे आत्मा राम आत्मा तुष्ट व्यक्ति आश्रम को बदल के गृहस्थ आश्रम स्वीकार क्यों किया, ये पहला सवाल था। और दूसरा सवाल यह है कि अगर गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद वो महान भक्त कैसा बन गया, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। पहला तो ब्रह्मचारी आश्रम एकदम सिचुएटेड था, आत्मा राम एकदम नैष्ठिक ब्रह्मचारी था, नैष्ठिक ब्रह्मचारी आश्रम चेंज किया, ये उनका क्वेश्चन था। और आश्रम चेंज करने पर गृहस्थ आश्रम से और ऊपर एकदम फ्लाइट उड़ गया ऊपर, तो ये दोनों उनका सवाल था। तो ये सवाल का जवाब आगे जाकर उसका मिलेगा। श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, एक एक तात्पर्य आगे आने वाला बहुत ही लोडेड है और प्रभुपाद जी यहाँ पर हमको समझाएंगे। खास करके यहाँ पर प्रभुपाद जी लास्ट में यही बताते हैं कि आत्मपातम ग्रहम अंधकूपम, गृहस्थ जीवन अंधकूप के समान है, यदि कोई इस कूप में गिर जाता है तो उसकी आत्मिक मृत्यु अवश्य अवश्यंभावी है। तो एक बार व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो हालांकि बाहरी तरफ से गृहस्थ आश्रम बहुत ही ये लगता है, लेकिन जो भक्त गृहस्थ आश्रम में रहकर भगवान का भक्ति कर रहे हैं तो महान आत्मा है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं गृहस्थ मतलब जो भगवान को केंद्र में रहकर भगवान का भक्ति कर रहे हैं तो वो सन्यासी के बराबर है। तो वहां पर रहकर भक्ति होती नहीं है, लेकिन कोई भक्ति कर रहे हैं तो वो महान आत्मा है। तो उनके चरण दो के हमने पानी पीना चाहिए। तो ये आत्मा यहाँ पर प्रभुपाद बोलते हैं अगले श्लोकों में यह बताया गया है कि गृहस्थ जीवन बिताते हुए भी महाराज प्रियव्रत किस प्रकार मुक्त परमहंस बने इसके बारे में वर्णन किया। ग्रंथ राशि में भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद हरिशंभु, वी वांट टू ऐड समथिंग।